एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन बाज हिस्टोरियन ये बात कहते हैं कि मे बी याजूज और माजूज जो हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ में हैं, जमीन के नीचे हैं, और अल्लाह वाला, मगर इसमें बहुत सी चीजें कनेक्ट होती हुई लगती हैं। इसलिए कि आप इमेजिन करें, आप में से जो लोग भी किसी हिल स्टेशन गए हैं, या आप जो हैं वो नारायण और शुगरान वगैरह गए, खासतौर पर नारायण कागान जो कि वैली हैं, आप इमेजिन करें कि आप दरियाए कुनहार के पास खड़े हैं और आपके चारों तरफ पहाड़ हैं, सही, या चले आपके दो तरफ पहाड़ हैं, आप इमेजिन कर रही हैं, उन दो पहाड़ों के दरमियान में शीट्स लगाना एक माइल्स की बात है, और उसके मुकाबले में अगर हम, वल्लाह वालम अल्लाह करवा सकता है, हम इसमें ये नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ एक जहन सोच रहे हैं, इसलिए कि सोचने की गुंजाइश अल्लाह ने दी है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप सिंक होल देखें जो जमीन में हो जाते हैं, सिंक होल, उन सिंक होल्स बहुत बड़े बड़े जॉइंट होते हैं, वो भी कई कई फीट पर होते हैं, कई कई माइल्स पर कभी कभी होते हैं, उसमें शीट्स के साथ लोहा भरना और फिर ऊपर से उसके ऊपर मोल्टन कॉपर डाल देना, सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ? मैं जब ये पढ़ रही थी, मुझे जहन में वो मूवी आई जा रही थी बार बार, बिकॉज देर इज अ वर्ल्ड इनसाइड दिस अर्थ। आपको पहले भी बताया था कि जैसे अल्लाह ने सात आसमान बनाए हैं, और उन सातवें आसमान में पहला आसमान हमारा दुनिया का आसमान है, जिसके ऊपर सितारे हैं, इसलिए कि स्कॉलर्स ने कुरान से ये बात प्रूफ करने की कोशिश की है, वल्लाह आलम, वो कहते हैं कि जो कुरान से पता चलता है उसे पता ये चलता है कि सितारे सिर्फ पहले आसमान दुनिया पर है, उसके बाद सब डार्क है, इट्स पिच डार्क। इस तरह से हम जिस जमीन पर रहते हैं ये यहां से पहली जमीन है, इसके बाद छह जमीनें नीचे और हैं, और वो छह जमीनें क्या इनहेबिटेंट्स के साथ हैं, क्या वहां पॉपुलेशन है, क्या वो उन लेयर्स की बात है जिसको साइंस आज अर्थ क्रस्ट कहती है, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बास हिस्टोरियन ये बात कहते हैं कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये याजूज और माजूज जमीन के अंदर बंद हैं। अल्लाह बेहतर समझता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो कि आपको मिलती है, उससे भी एक हिंट मिलता है, एन मुमकिन है कि ये जमीन के नीचे हों। वो हिंट कैसे मिलता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दिन याजूज और माजूज की कौम इस दीवार में नकब लगाने की कोशिश करती है, या चढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि चढ़ने से ज्यादा ये उसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं। और जब आप ये सोचते हैं कि चढ़ने से ज्यादा सुराख करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका जहन इस तरफ जाता है कि मे बी सेंटर ऑफ द अर्थ की बात हो, मे बी, वल्लाह वाला। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये इसमें नकब लगाने की कोशिश करते हैं, सारा दिन ये एफर्ट करते रहते हैं, यहां तक कि इनको सूरज की रोशनी नजर आना शुरू हो जाती है। इससे भी हिंट मिलता है ना, इसका मतलब है ये जमीन पे नहीं है, वरना जमीन पे हो तो उनको सूरज की रोशनी तो नजर आ रही हो, भाई वल्लाह आलम, अगर अमेजोन थिक फॉरेस्ट में होंगे तब सूरज की रोशनी नहीं आ सकती। अल्लाह बेहतर समझता है, एवरीथिंग इज एम्बिगुअस, लेकिन आपके सामने रख रही हूं ताकि आपका जहन सोचे और आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा तफक्कुर करके अपने आज के याजूज और माजूज जिनको आप समझते हैं उनसे जो है वो बेहतर तरीके से मामला करें। तो वो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इतना इसमें होल करने के काबिल हो जाते हैं हर दिन कि उसमें से इनको सूरज की रे नजर आना शुरू हो जाती है, यहां तक कि जो इनका इंचार्ज है इनकी, वो कहता है अब ड्यूटी शिफ्ट हो गई, वल्लाह आलम, ये इंचार्ज स्कॉलर्स कहते हैं हदीस के मुताबिक हो सकता है कोई फरिश्ता हो जिसको अल्लाह ताला इनको हुक्म इनके ऊपर रखा हुआ है, और ये इनको इंचार्ज बन के हुक्म देता है कि बस शिफ्ट चेंज, और जब शिफ्ट चेंज होती है और ये थक भी जाते हैं तो फिर जब अगली शिफ्ट आती है, बाय द टाइम जब अगली शिफ्ट काम शुरू करती है, वो दीवार अल्लाह के हुक्म से वैसे ही दोबारा से बंद हो जाती है, बल्कि उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाती है जितना इन्होंने उसको होल किया होता है। और फिर हदीस में आता है कि टिल द टाइम, ये रोज ऐसा ही होता है, यहां तक कि एक दिन इनका जो इंचार्ज है वो इनसे कहेगा कि अब आपकी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया, अब इंशाल्लाह कल आकर ये काम करेंगे, तो उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म से अगले दिन उस दीवार को गिरा दिया जाएगा और ये याजूज और माजूज जो है ये स्लिप करते हुए पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे। आप देखें सूरह कहफ और इंशाल्लाह का कनेक्शन, तीन मुकाम हो गए कुरान में, दो और एक सही हदीस के जरिए। एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि जब आप किसी काम का मुस्तकबिल में इरादा करें तो कहिए इंशाअल्लाह। मूसा अलैहि सलाम ने कहा था इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। और यहां हदीस के जरिए पता चल रहा है कि वो जो इंचार्ज है इन याजूज और माजूज का, वो जिस दिन इंशाअल्लाह कह देगा उस दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज और माजूज दुनिया में फैल जाएंगे। ہو سکتا ہے اس انشاءاللہ اور سورہ کاف میں اور بھی کنیکشنز ہوں, اللہ تعالیٰ ایسے مفسرین پیدا کرے کہ جو ان مسٹریز کو سالو کر سکیں. بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر یہ ہیں یا کسی یا زمین کے اندر ہیں یا کسی بہت بڑے پہاڑ کے اندر ہیں کہ جس کے اندر ان کو سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی. اللہ بہتر سمجھتا ہے, واللہ عالم. بعض لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اور وہ دیوار اس دنیا میں ہو اور آج ہمارے علم میں نہ آئی ہو. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے نا, کرٹکس کرنے والے لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں. وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے بیسک پرنسپلز پر جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں اس پر کرٹیسزم کر دیا, تو وہ چیز جو قرآن میں ہے اور دنیا کو نظر نہیں آ پا رہی ہے, آپ سوچیں اس پر کتنا کرٹیسزم ہوا ہوگا. تو لوگوں نے کہا, کہ یہ فالس کلیم ہے, اس لیے کہ ہم تو دنیا کو ایکسپلور کر چکے ہیں, ہمیں تو کہیں کوئی ایسی دیوار نظر نہیں آئی, ہمیں کہیں کوئی ایسی قوم نظر نہیں آئی جس کو کسی بیریئر کے پیچھے بند کر کے رکھا ہو, یا ہمیں کئی آئرلینڈ نہیں ملا, اس لیے کہ کسی آئرلینڈ کے اندر ذکر آتا ہے جہاں دجال کو اللہ نے بند کیا. بھائی واللہ عالم, انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایسا آئرلینڈ نہیں ملا. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ آج بھی دنیا کا بہت سا علاقہ اس وقت انڈسکورڈ, تھک سے تھک ایمازون فارسٹ موجود ہیں, اور ایمازون فارسٹ جو ہے رین فارسٹ 9 کنٹریز کو انکمپس کرتے ہیں. آپ کی سیٹلائٹس ابھی بھی اگر اوپر سے دکھاتی ہیں تو صرف اور صرف درخت دکھاتے ہیں, اس کے نیچے اس کی زمین پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے کوئی نہیں دیکھ سکا ہے, اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی پہنچا ہی نہیں ہے, انٹچڈ ہے. انٹچڈ پلیسز آن دا فیس آف دس ارتھ از اسٹل ہیئر. انسان سمجھتا ہے وہ سب جگہ پہنچ گیا, انسان سب جگہ نہیں پہنچا ہے. اور یہ ان ایمازون رین فارسٹ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی اسپیشی یہاں سے نکلتی ہے. انفیکٹ اب سائنٹسٹ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ تقریباً دنیا میں جتنی بھی اسپیشیز ہیں اس کا 50% ان ایمازون رین فارسٹ کے اندر ہے, اور جو کہ ابھی بھی انڈسکورڈ ہے, ساری اسپیشیز جو ہیں وہ سامنے آئی بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے افریقہ میں ایک علاقہ ہے کانگو بیسن, اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا, وہ صرف آپ کو اوپر سے درخت نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور یہ کانگو بیسن کا علاقہ جو ہے یہ افریقہ کا 15% ہے, اور یہ انٹچڈ ہے, یہاں لوگ نہیں پہنچے ہیں. اس کے اندر کیا ہے, کون سی اسپیشیز ہیں, انسان ہیں یا نہیں ہیں, واللہ عالم. جائنگینٹک ایریا ہے جو کہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا ہے. اسی طرح سائبیریا, ہم سب جانتے ہیں سائبیریا اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ وہ پورا ایکسپلور ہی نہیں ہو سکا ہے. کہاں پر کون سی آبادی ہے اور کیسے لوگ ہیں, واللہ عالم, اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. بھوٹان میں ایسے پہاڑ ہیں, بھوٹان جو کہ ہمارے ساتھ ہی بہت ہی قریب ہے, بھوٹان میں ایسے پہاڑ ہیں جہاں پر وہ ان پہاڑوں کو سیکرٹ سمجھتے ہیں, اور جائنٹ پہاڑ ہیں, اور کیونکہ وہ ان کو سیکرٹ سمجھتے ہیں تو وہ کسی کو اس پر کلائمب کرنے کی, اس پر چڑھنے کی, ماؤنٹین کلائمبنگ کی اجازت نہیں دیتے. تو کیسے ہم کلیم کر سکتے ہیں, یا کیسے دنیا کلیم کر سکتی ہے کہ ہم نے تو دنیا چھان لی, ہمیں تو کہیں پہ بھی جو ہے وہ گوگ میگوگ اور دجال کا آئلینڈ نہیں ملا. اگر مسلمان علم حاصل کریں گے تو جواب دے سکتے ہیں, ورنہ جب مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو چاہے ان کے نبی کے کارٹون بن جائیں, چاہے ان کے نبی کی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ نامناسب الفاظ استعمال کیے جائیں, چاہے قرآن کا مذاق اڑایا جائے, چاہے احادیث کو غلط اور فالس فیلسیز قرار دیا جائے, مسلمانوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ مسلمان علم حاصل نہیں کرتے ہیں. ہم نہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور نہ ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں. جو ہمارے بچے دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی صرف اتنا کہ وہ ایک اچھی منی میکنگ مشین بن جائیں, سو دے کین بی انڈیپینڈنٹ ان لائف فار ایور. اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے فار ایور کی ٹرم اس دنیا پر اپلائی ہوتی ہی نہیں. یہ چیز سمجھنے کی ہے. آپ سوچیں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کہیں وہیں سے تو نہیں اتری ہیں نا, ساری تو انٹرنیٹ پر موجود ہیں, ساری کتابوں میں موجود ہیں, ساری ریسرچ جو ہیں وہ اس کی ریسرچ سکین پیپرز اور رپورٹس اور آرٹیکل سب موجود ہیں. پڑھنے کی ضرورت ہے, کتابوں کو چھاننے کی ضرورت ہے, قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے اندر کتنی لائلٹی ہے آپ کا ایمان اور آپ کا عمل واضح کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں, ظاہری بات ہے ہر انسان کا انکلینیشن ادھر نہیں جائے گا, بٹ اگین یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اللہ نے آپ کے اندر ڈومیننٹ خوبی کیا رکھی ہے. آپ کو پتہ کرنا ہے اپنے بارے میں. اللہ نے ہر انسان میں, جتنے انسان بنائے ہیں, اللہ نے ہر انسان میں ایک کوالٹی ایسی رکھی ہے جس کو اگر وہ ہارنیس کر لے تو وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ میری خوبی ہے کون سی. قرآن کے سامنے آ کے بیٹھے, 120% میں آپ کو بتا رہی ہوں شورٹی کے ساتھ, قرآن آپ کی وہ خوبی پن پوائنٹ کر دے گا کہ آپ کی وہ خوبی ہے کون سی. قرآن بتا دیتا ہے آپ کو, قرآن آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے, قرآن آپ کو ڈائریکشن دکھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو ابھی بھی کئی جگہ ایسی ہیں جو گوگل میپ جو ہے وہ صرف اس کے اوپر درخت دکھاتا ہے. ابھی انٹارکٹیکا کے اندر جو ہے 2 سال پہلے ایک لیک جو ہے وہ ڈسکور ہوئی ہے. تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ دنیا ساری ایکسپلور ہو چکی اور اب کچھ ایکسپلور نہیں ہوگا؟ کچھ بھی ایکسپلور ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ. ایون گرین لینڈ کے اندر بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کہاں پر ہیں یہ یاجوج اور ماجوج؟ انڈر ورلڈ ہیں, کسی پہاڑ کے اندر ہیں, نارتھ پول میں ہیں, ساؤتھ پول میں ہیں, کس بیریئر کے پیچھے ہیں, کن دو پہاڑوں کے پیچھے ہیں, واللہ عالم, واللہ عالم. ہاں ہم اس کی ضرور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے, اللہ ہم مسلمانوں کو اس قرآن کا ایسنس سمجھا دے, اللہ ہمیں وہ علم دے دے جو ہمارے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے اور آنے والی امت کے اندر مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری صلاحیت دکھا دے تاکہ میں اس قرآن کے سامنے بیٹھ کر اپنا بھی فائدہ کر سکوں, دنیا اور آخرت کا بھی فائدہ کر سکوں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی فائدہ مند چیز پیچھے چھوڑ کر جا سکوں. آگے فرمایا آیت نمبر 99 میں, وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ جو آیا ہے, يَوْمَئِذٍ سے مراد کیا ہے؟ کس دن چھوڑ دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دیوار کو گرا دے گا اور وہ ویوز کی طرح ایک کے اوپر ایک گروہ, جیسے آپ نے دیکھتے بعض وہ دکھاتے تھے موویز میں, وہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ بیٹلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کراس کرتے ہوئے بالکل رول کرتے ہوئے آ رہے ہیں پہاڑ سے نیچے, بالکل یہ الفاظ یہاں پر آئے ہیں. یا موجو فی بعدن و نفخ فی الصور, وہ ایک دوسرے کے اوپر رول کرتے ہوئے جو ہیں تیزی سے باہر نکلیں گے. جیسے کسی جگہ میں آپ اینٹ ہول کے اندر اگر ذرا سا بھی جو ہے وہ اسموک چھوڑ دیں تو تیزی سے اینٹس جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. تو ویوز کی طرح ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ باہر نکلیں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ٹریپ کیا ہوا ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ کوانٹٹی وائز یاجوج اور ماجوج بالکل بیس کی طرح ہیں, مکھیوں کی طرح یا مچھروں کی طرح یا بیٹلز کی طرح یا بگس کی طرح, سوارمنگ اتنے زیادہ ہیں کہ کوانٹٹی ان کی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے گا, فجمعناہم جمعا, تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاجوج اور ماجوج سے کئی موقعوں پر وارن کیا ہے اور آپ کو بتایا کہ 10 نشانیاں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ 10 نشانیاں تمہیں نظر نہ آ جائیں, جب تک یہ 10 علامات تم کاؤنٹ نہ کر لو, قیامت قائم نہیں ہوگی, قیامت کبرا قائم نہیں ہوگی. قیامت صغرا کیا ہوتی ہے؟ جس انسان کی جو موت ہے وہ اس کی قیامت صغرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کبرا قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کاؤنٹ کر کے یہ 10 علامات نہ ہو جائیں. ان کو کہتے ہیں اشرت الساعۃ الکبرا, 10 وہ بڑی نشانیاں, 10 major signs آف دا ساعۃ, قیامت کے 10 بڑی نشانیاں. اور ان کے لیے آتا ہے کہ ایک پہلی آئے گی اس کو فالو کرتی ہوئی اگلی آئے گی, مطلب پھر درمیان میں گیپ نہیں آئے گا. یہ 10 نشانیاں کنزیکٹو آئیں گی, ایک کو کھولا جائے گا پھر دوسری لائی جائے گی پھر تیسری پھر چوتھی, اس طرح سے یہ آتی جائیں گی, ون آفٹر دا اندر, واحد انتل والآخر, یہاں تک کہ آخر تک جو ہے وہ معاملہ پہنچ جائے گا اور قیامت کو قائم کر دیا جائے گا. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں اینڈ آف ٹائم سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرت الصغرا بھی بتائی ہیں, اور بعض اسکالرز نے جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں بعض نے تقریباً 100 مینشن کی ہیں احادیث سے, اور بعض نے تقریباً 150 مینشن کی ہیں. اور اگر آپ ان کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 100 ہوں یا 150 ہوں وہ سب ٹک کراس چیک ہو چکے ہیں. ساری قیامت صغرا کی نشانیاں جو احادیث میں ملتی ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. آپ امیجن کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا قیامت صغرا کی نشانیوں میں سے قیصر روم کے کنگن سے, بریسلٹ سے, کہ قیصر روم کے کنگن جو ہیں وہ سراقہ بن مالک پہنیں گے. اور جب حضرت عمر نے اس کو کانکر کیا ہے قیصر روم کو, تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا تھا کہ کہاں ہیں, ان کو بلوایا اور ان کے ہاتھ نے وہ بریسلٹ پہنائے کہ آج رسول اللہ کی پروفیسی پوری ہو گئی. پھر آپ نے اسی طرح یہی فرمایا تھا کہ مسلمان یمن میں پہنچ جائیں گے. مسلمان یمن میں کب سے پہنچے ہوئے؟ مسلمان جو ہیں وہ استنبول پہنچ جائیں گے, مسلمان جو ہیں وہ مصر پہنچ جائیں گے, مسلمان پھر مسلمانوں کے اندر فحشا ڈیولپ ہو جائے گا, मुसलमानों के अंदर ऑब्सेनिटी और न्यूडिटी आ जाएगी और उम्मत के अंदर भी आएगी और ओवरऑल दुनिया में भी आएगी, और हम अपनी आंखों से इस वक्त वो सारा मामला देख रहे हैं। आपकी हदीस आती है, आपने फरमाया था वराईता रिया उशा, तुम शेपर्ड्स को देखोगे यतता व ऊना फिल बुनियान, बिल्डिंग्स बनाने में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करेंगे। और ये शेपर्ड्स कौन है? मिडल ईस्ट अरब्स, अरब इन पेनिनसुला। और ऐसे लगता है कि मुकाबला चल रहा है, एक प्रिंस बनाता है एक टॉल बिल्डिंग तो उसका भतीजा या भांजा या अगला प्रिंस कहता है मैं इससे भी बड़ी बनाऊंगा, एक और बनाता है वो कहता है मैं इससे भी बड़ी बनाऊंगा। और ये अल्लाह ताला खुद ब खुद हदीस को फॉलो करवा रहा है, अल्लाह ताला निशानियां पूरी, और वो निशानी पूरी हो चुकी है। इसलिए स्कॉलर्स आज कहते हैं कि जितनी तकरीबन अहादीस से 150 सुगरा निशानियां निकलती हैं, छोटी निशानियां, ये सब पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ कुबरा का इंतजार है। आप और मैं उस दरमियान के पीरियड में हैं जिसमें हमारे पास मोहलत बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कि एक दफा पहली निशानी कयामत कुबरा की मेंशन हो गई उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा का मौका आज है, आज मैं और आप अल्लाह की तरफ पलट आए। और जो कबीरा अलामत हैं 10, उनमें से जो पहली अलामत है वो पहली अलामत है ज़हूर दज्जाल, दज्जाल का ज़हूर। एक दफा दज्जाल आ गया सामने उसके बाद तौबा नहीं कबूल होने वाली, और दज्जाल ऐसा फितना और फसाद करेगा जैसा कभी किसी दुनिया में किसी कौम ने और किसी इरा ने नहीं देखा होगा। अल्लाह के रसूल की कई वार्निंग्स इस दज्जाल के बारे में आती हैं। सही मुस्लिम की हदीस में आता है, आपने फरमाया दज्जाल, दज्जाल कौन होगा, इंसान होगा या बीस्ट होगा? आपने फरमाया दज्जाल आदम की औलाद में से है, इंसान होगा, और नौजवान यंग मैन होगा विद अ रूडी कॉम्प्लेक्शन, पिंक कलर का कॉम्प्लेक्शन नहीं जैसे होता, ऐसा कॉम्प्लेक्शन उसका होगा, छोटी हाइट का होगा, चबी होगा, थिक कर्ली हेयर, वाइट फोरहेड, और एक सीधी आंख उसकी या तो ब्लाइंड होगी, बास स्कॉलर्स कहते हैं डिफेक्टिव होगी, लेकिन ब्लाइंड होने के चांसेस ज्यादा सही हदीस से पता चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस का मफहूम आता है, आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा और मैं ख्वाब में तवाफ कर रहा था, इतने में मैंने देखा कि सीधे बालों वाला डार्क कॉम्प्लेक्शन का एक नौजवान खड़ा है जिसके दोनों तरफ दो लोग हैं। मैंने उनसे पूछा, और ये जो दरमियान में शख्स खड़ा था जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन का था और बाल सीधे थे, मैंने पूछा कि ये कौन है, और उसके सर से पानी ड्रिप कर रहा था, तो अल्लाह के रसूल को बताया गया कि ये ईसा इब्ने मरियम है। और आप अपने चर्चिस, ये जो हमारे क्रिश्चियंस जितने भी कम्युनिटी है इनके चर्चिस के अंदर जो ईसा अलैहि सलाम की तस्वीरें देखते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा बनाते हैं? फेयर कॉम्प्लेक्शन। ईसा अलैहि सलाम फेयर नहीं थे, मतलब झूठ के ऊपर झूठ है ना। ईसा अलैहि सलाम दिसंबर में पैदा हुए थे ना, ईसा अलैहि सलाम जो है वो वेटिकन में पैदा हुए थे उस जगह पे जो मुकाम वो बताते हैं ना, ईसा अलैहि सलाम जो थे वो गोरे चिट्टे थे, ईसा अलैहि सलाम डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, हाँ बाल आपके सीधे होंगे, ये हदीस से पता चलता है। और जब अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में देखा तो आपके बालों से पानी ड्रिप कर रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन है, तो आपको बताया गया कि ये ईसा इब्ने मरियम है। रसूल अल्लाह ने कहा फिर मैं मुड़ा तो मुझे एक और शख्स नजर आया जो कि रूडी कॉम्प्लेक्शन का था, वेल बिल्ट था, यानी अच्छा चबी इंसान था, कर्ली बाल थे और सीधी आंख से ब्लाइंड था। मैंने पूछा कौन है, तो बताया गया ये फॉल्स मसाया है, दज्जाल है, मसीहुद्दज्जाल। अल्लाह ताला ने दो तरह के मसीह बनाए, एक सच्चा मसीह ईसा अलैहिस्सलाम और एक झूठा मसीह यानी कि मसीहुद्दज्जाल। दज्जाल असल में धोखा देने से है, किसी चीज की हकीकत को कवर करने से आता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती हैं जिसमें आपने सहाबा को जब दज्जाल का डिस्क्रिप्शन बताया था तो आपने एक यहूदी मैजिशियन से उसको रिजेंबल करते हुए बताया था, एक यहूदी मैजिशियन जिसका नाम आता है अब्दुल उज इब्ने कतान, आपने कहा था इससे मिलता जुलता होगा, यहूदी मैजिशियन था उससे आपने कहा था, और ये बुखारी के अंदर हदीस आती है। और इसके लिए आता है दज्जाल के लिए कि दज्जाल ईस्ट से इमर्ज होगा, मशरिक से इमर्ज होगा, यहां अपियर होगा। अहदीस में इलाका मेंशन किया गया है, खुरासान से अपियर होगा और इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। खुरासान ईरान का शहर है और ये पूरी दुनिया का सफर करेगा, हर जगह जाएगा। अब आप सोचें फितना कितना बड़ा है, हर जगह जाएगा और अपनी ताकत का इजहार करता रहेगा। जिनके ईमान कमजोर होंगे वो बिल्कुल पाइट पाइपर की तरह इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे, वो कहानी याद है ना पाइप पाइपर की, उसकी तरह इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। और ये सारी दुनिया को एक्सप्लोर करेगा सिवाय मक्का और मदीना के, इसलिए कि ये मक्का तक भी जाएगा और मदीना तक भी जाएगा लेकिन फरिश्ते तलवार लिए खड़े इसको नजर आएंगे और इसको दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर आता है आगे कि ये शख्स, अब बहुत डिटेल में इसकी नहीं जा रही वरना तो आपको हदीस में बहुत डिटेल मिलती हैं, इस दज्जाल को एक शख्स कत्ल करेगा और वो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। तो यानी पहली निशानी है ज़हूर दज्जाल और दूसरी क़यामत कुबरा की निशानी है ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल। अल्लाह दूसरी निशानी के तौर पर क़यामत की ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेगा, रिटर्न ऑफ ईसा, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करेंगे। अब आप ये टाइम पीरियड देख लें, वो जंगें हो गई सारी मुसलमानों की, फाइनली ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को मर्डर कर दिया और उसके बाद अब ईसा अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर्स रह गए। इसी मौके के लिए आता है वो जो मेहदी अलैहिस्सलाम है उनके पीछे उनकी इमामत में हजरत ईसा एज अ मुक्तदी नमाज पढ़ेंगे। मेहदी कहेंगे कि आप आइए इमामत कराइए, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं मैं आपकी इमामत में नमाज पढ़ूंगा। उनकी क़यादत के अंदर मुसलमानों के साथ ईसा अलैहिस्सलाम सफ में खड़े होकर वाजमात नमाज अदा करेंगे। इस मौके के ऊपर फिर आता है अगली निशानी का जहूर होगा, और ये आपको बताया कि ये साइमल्टेनियस होंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कनेक्शंस के साथ, बिल्कुल जैसे एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का मफहूम आता है कि जैसे धागे के अंदर बीड्स को डाला हुआ होता है, एक के बाद एक बीड होती है, आप एक गिराएं तो दूसरी ऑटोमेटिक गिरती जाती है, इसी तरह से क़यामत की ये कुबरा निशानियां सामने आती जाएंगी। तो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को वही करेंगे कि अब अल्लाह एक ग्रुप को भेजेगा तो वो आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, आप और आपके फॉलोअर्स जो हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तो आप पहाड़ों की तरफ चले जाइए। और फिर तीसरी निशानी वाजे होगी और वो तीसरी साइन जो है क़यामत का वो याजूज और माजूज होंगे, जिनके लिए आता है वाहुम मिन कुल्ली हदबिन यनसिलून, हर तरफ से वो, हर ऊंचाई से वो स्लिप करते हुए आ जाएंगे। अहदीस में जो इनका डिस्क्रिप्शन आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याजूज और माजूज की आंखें छोटी होंगी, इनके लिबास फर के वूल के होंगे, इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी, किसी दरिया के पास से गुजरेंगे तो पूरा दरिया का पानी पी जाएंगे। अहदीस में एक जो लेक है फलस्तीन की तबरिया, उसको मेंशन किया गया है कि इसके पास से याजूज और माजूज का एक ग्रुप गुजरेगा और जितनी देर में दूसरा ग्रुप पीछे से आएगा, और ये बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी जगह है, एक वाटर बॉडी है, जितनी देर में दूसरा ग्रुप आएगा वो सिर्फ ये देखेगा कि अच्छा यहाँ कभी पानी होता था, इतनी तेजी से ये सारा, इतनी क्वांटिटी में होंगे कि सारा पानी जो है ये पी जाएंगे, इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। इनके बारे में आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं कि पहले ये 10 निशानियां लिख लीजिए वरना रह जाएंगी। उसके बाद चौथी, पांचवी और छठी निशानी जो है, चौथी निशानी है अर्थक्वेक मशरिक में, लैंड स्लाइडिंग जिसके लिए आता है, सिवियर लैंड स्लाइडिंग मशरिक में, फिफ्थ साइन सिवियर लैंड स्लाइडिंग मगरिब में, और सेवेंथ साइन, सिक्स साइन सिवियर लैंड स्लाइडिंग मैसिव अर्थक्वेक जजीरतुल अरब में। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो हैं वो तीन मुख्तलिफ इलाकों के अर्थक्वेक्स हैं। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए, पहली तीन निशानियां सीक्वेंस में हैं। पहली तीन निशानियां कौन सी हैं? दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और याजूज और माजूज, ये सीक्वेंस्ड फिक्स्ड है। इसके आगे की सीक्वेंस जो है वो थोड़ी आगे पीछे आपको अहदीस में मिलती है, तो अल्लाहु आलम, अल्लाह ताला अपने हिसाब से मामला करेगा। जो सेवेंथ बड़ी निशानी है वो है स्मोक दुखान, किस तरह का स्मोक होगा, क्या पोल्यूशन होगी, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है। आठवीं निशानी जो इसके बाद वाजे की जाएगी वो होगा दाब, वो बीस्ट, वो जानवर जिसको अल्लाह जमीन से निकालेगा और वो इंसानों से कलाम करेगा, वो इंसानों को तबलीग करेगा, बाइबल में भी इसका मेंशन किया गया है। और ये वो वक्त हो गए सारे जिसमें याद रखें मामलात सील्ड हो चुके हैं, अब किसी की तौबा नहीं कबूल होने वाली, ये सिर्फ अब इस वक्त जो मामले हो रहे हैं जो जमीन पर होंगे मोमिनीन, वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, अल्लाह ताला उनको जब तक रखना होगा अल्लाह उनको रखेगा, और उसके बाद उन वो भी चले जाएंगे, अल्लाह उनको भी उठा लेगा, तो सिर्फ कुफार रह जाएंगे। नौवीं निशानी, नाइन्थ साइन है तुलू इश्शम्स मिन मगरिबिहा, सूरज का राइज होना, सूरज का तुलू होना उसके मगरिब से, सूरज वेस्ट से राइज करेगा। और दसवीं निशानी जो आखिरी निशानी होगी, जो रोशुलुम और बिलादुश्शाम से एक आग उठेगी, आग लगेगी, और उसके बाद वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी और जितने भी दुनिया में इंसान होंगे वो आग उनको ऐसे इकट्ठा करेगी कि उनका अगला कदम रोजे महशर में आएगा। यह आखिरी निशानी होगी जो अल्लाह वाजे करेगा, और ये सब साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक फिक्स सीक्वेंस के अंदर, शुरू के तीन होंगे, उसके बाद अल्लाहु आलम अल्लाह कैसे करेगा। हमारा टॉपिक क्योंकि इनमें से याजूज और माजूज है तो हम इसी को देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसरा वल मेराज पर गए तो आप आपके लिए आता है कि आप कहते हैं मैंने वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया कि हमने वहां पर गुफ्तगू की। अब क्या गुफ्तगू हुई, वल्लाहु आलम, जो अल्लाह के रसूल ने मेंशन किया, आपने कहा कि हमने उन अपने गुफ्तगू में, अपने डिस्कशन में क़यामत को डिस्कस किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यानी कहा कि मुझे नहीं मालूम क़यामत कब आएगी, और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी नबी, किसी रसूल, किसी फरिश्ते को नहीं बताया कि क़यामत कब आएगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन की नॉलेज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा रसूल अल्लाह ने, तो उन्होंने भी कहा मुझे भी क़यामत के दिन का इल्म नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे इल्म नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह मुझे वापस भेजेगा, मैं दज्जाल को कतर करूंगा और उसके बाद याजूज और माजूज जो हैं वो निकल आएंगे, अल्लाह उनको भेजेगा और मैं अपने फॉलोअर्स को लेकर पहाड़ पर चला जाऊंगा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की टू डू लिस्ट के अंदर ये अमल उनको बता दिया गया है अभी से अल्लाह ताला ने। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि हम उन लोगों से यानी याजूज और माजूज से जंग नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, बल्कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इनके फितने से महफूज रख। और ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने इन लोगों को लेकर पहाड़ों पर चले जाएंगे। हो सकता है किसी के जहन में सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दज्जाल जैसे फितने को ख़त्म कर दिया तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मदद के साथ याजूज और माजूज से झगड़ा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे, स्कॉलर्स कहते हैं कि याजूज और माजूज का खौफ, उनकी ईवलनेस और उनकी तादाद ह्यूमंगस होगी, इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इंसानों को, इंसान उनको शिकस्त नहीं दे सकता। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम भी ये कदम नहीं उठाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बस दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इस फितने फसाद से महफूज रख। आपको ये याजूज और माजूज का जिक्र, जिनको ये गोग और मैगोग कहते हैं, इसका जिक्र आपको जेनेसिस में भी बहुत मिलता है, बाइबल के अंदर भी, और बाइबल में काफी तफसील के साथ जो है वो इन चीजों को बताते हैं। बाइबल के मुताबिक वो कहते हैं, वल्लाहु आलम इसमें कितनी सच्चाई है, इब्ने कसीर और इमाम तबरी ने इसको फेवर किया इसलिए आपको मेंशन कर रही हूं। बाइबल ये कहती है जेनेसिस के याजूज और माजूज नूह अलैहिस्सलाम के जो तीसरे बेटे थे याफिस, उनकी नस्ल से हैं। आपको मालूम है ना कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे को तो अजाब में हलाक कर दिया था जो कि नाफरमान था, और तीन बेटे आपके और थे, साम, हाम और याफिस। तो आप अगर बाइबल पढ़ें तो जो हिस्ट्री आपको पता चलती है उससे पता चलता है कि जो साम के लोग थे ये सिमेटिक नेशंस थे सारे, जजीरा नुमा अरब वाले। जो हाम थे आपके बेटे, इनसे जनरेशंस आगे चली थी अफ्रीकन नेशंस जो चली थी, और ये जो याफिस हैं इससे जनरेशन चली थी फास्ट ईस्टर्न को कंट्रीज हैं इनकी जनरेशन चली थी। वल्लाहु आलम इसमें कितनी सच्चाई है, मगर इनका कहना यह है कि याजूज और माजूज जो हैं ये याफिस की जनरेशन से, इनकी नस्ल से होंगे। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आया था 624 हिजरा में कि जब गेंगिस खान ने मुसलमानों पर हमला किया था और बहुत बुरा इन्वेजन हुआ था मुसलमानों के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि ये शायद जो हैं ये याजूज और माजूज हैं, इसलिए कि उन्होंने एक एक लैंड मुसलमानों का जो था वो कॉन्कर कर लिया था। और आपको मालूम होगा कि गेंगिस खान, जिसको उर्दू में चंगेज खान कहते हैं, इसने समरकंद की मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर ये कहा था कि मैं मुसलमानों, तुम्हारी कमजोरी की वजह से अल्लाह ने मुझे तुम पर फतह दी है। और बहुत ही बुरी तरह मुसलमानों के साथ जो था यहां पर जुल्म का मामला हुआ था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हकीकत है आईना दिखाया था, इसलिए कि ये वो वक्त था जब मुसलमान लग्जोरियस लाइफस्टाइल्स का शिकार हो चुके थे, मुसलमानों के दिलों में हुब्बुद दुनिया घुप चुके थे, और जब ये हुब्बुद दुनिया का शिकार हुए थे तो बास स्कॉलर्स ने उसके बाद के वक्त के ये कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम मुसलमान उम्मत के अंदर हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत बढ़ जाएगा। तो उन्होंने उससे अज्यूम करके ये कहा कि ये जो गेंगिस खान की सारी नेशन आई थी असल में ये जो है शायद ये याजूज और माजूज थे। आपको मालूम होगा 1258 CE में बगदाद के दरवाजे पर ये गेंगिस खान की सारी जो नेशंस थी ये पहुंची हैं, और आखिरी खलीफा था मुसलमानों का जिसको सड़क पर घसीट के लाया गया, उसके खानदान के एक एक फर्द को उसकी आंखों के सामने मर्डर किया गया और फाइनली इसको भी कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद से मुसलमानों के पास खिलाफत नहीं आई। ये वो दौर था जिसके बाद बास स्कॉलर्स ने यह राय दी कि मुसलमानों पर इतना सख्त इन्वेजन हुआ है तो शायद यही याजूज और माजूज थे, लेकिन बाद में फिर उसको खुद से ठीक किया गया कि नहीं ये याजूज और माजूज नहीं थे, इसलिए कि बाकी निशानियां जो थीं वो वापस नहीं आई थी। तो ये याजूज और माजूज की हकीकत है. कुछ थोड़ी सी और बात इंशाल्लाह इसके ऊपर कल कर लेंगे, इसलिए कि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें बाज़ोकात हम कंफ्यूज भी रहते हैं क्योंकि हमारे पास आसपास की स्टोरीज और मिथ्स बहुत ज्यादा हैं. बेहतर है कुरान और सुन्नत पर स्टिक करें और सही इल्म हासिल करें. और इस इल्म हासिल करने का मकसद जो है वो कोई मूवी बनाना, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना, कोई फेरी टेल की तरह कहानी सुनना नहीं है, बल्कि एक हकीकत जानना मकसद है. और कुरान हकीकत जैसे जहन्नुम की बताता है, अवेयरनेस के लिए, जगाने के लिए और लोगों को और मुसलमानों को अमल पे लाने के लिए, ऐसे ही कुरान की ये कहानियां, ये फितने, इनकी इंफॉर्मेशन हमें अमल पर खड़ा करने के लिए हैं. अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के फितनों से महफूज रखे. अल्लाह ताला हमें एंड ऑफ टाइम्स के फितनों से महफूज रखे. अल्लाह हमें हालत ईमान में मौत दे. अल्लाह हमारे लिए इस कुरान का इल्म हासिल करना आसान बना दे. अल्लाह ताला हमें हर परेशानी में अपने से जोड़ने वाला बना दे. अल्लाह हमें अपनी हर नेमत को आपके साथ जोड़ने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह हमारे लिए आसानियां फराहम कर. अल्लाह हमारे लिए आप अपना बंदा बनना आसान बना दें. या अल्लाह हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना और आपका सदका जारिया बनना इसकी तौफीक अता फरमा दीजिए. बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफानी व इयाकुम बी आयाती व ذکر الحکیم सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता نستغفرك ونتوب إليك جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته